वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आप सबको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल होंगे। मित्र, आज फिर से हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जीवित परमेश्वर के वचनों में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय के इन विषयों पर चर्चा किया, मनुष्य का परमेश्वर से संबंध, मनुष्य का गरीबों से संबंध, मनुष्य का अपने पड़ोसी से संबंध और मनुष्य का संबंध विभिन्न जीवन परिस्थितियों में। प्रिय मित्र, आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 20 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है 10 आज्ञाओं को तोड़ने की सजा अर्थात दंड संहिता। डॉक्टर एंड्रू बोनार लय व्यवस्था पर लिखे अपने पुस्तक में इस अध्याय को इस प्रकार से कहते हैं, उनसे पहले निवासियों के पाप के विरुद्ध चेतावनियां, दूसरे शब्दों में यही पाप कनानियों के भी थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि 10 आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ने की सजा मृत्यु निर्धारित थी। दंड संहिता की सूची में सभी पापों की सजा यहाँ मृत्यु नहीं है। उदाहरण के तौर पर हत्या इस अध्याय की सूची में नहीं है, लेकिन हम कहीं और से सीखते हैं कि हत्या की सजा मृत्यु है। इस कारण से मैं अनुमान लगाता हूँ कि 10 आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ने की सजा मृत्यु थी। प्रिय मित्र, मृत्यु की सजा को परमेश्वर ने स्थापित किया है। वह न्याय और धर्मी है और उसने मृत्यु की सजा को निर्दयता और कठोरता के साथ उपयोग किया। परमेश्वर के वचन में अपराधी का सजा उसको सुधारने के उद्देश्य से कहीं भी नहीं दिया गया है। इसका लक्ष्य वह नहीं था। अपराधी की सजा लोगों की भलाई के लिए था और अपराध की सजा अपराध को रोकने के लिए था। यह अपराध दर को घटाता है। देश में व्यवस्थाहीनता का भयानक महामारी की तरह फैलने का बहुत कारणों में से एक कारण हमारे कमजोर न्यायाधीश भी हैं, जो कानून को शक्ति के साथ लागू नहीं करते हैं। मृत्यु की सजा पर बहुत से लोगों को रोना रोते हुए हम सुनते हैं। अच्छे और पर्याप्त कारणों से परमेश्वर ने मृत्यु की सजा को स्थापित किया है। भड़के न्याय को संतुष्ट करना होगा और न्याय और धार्मिकता सजा की मांग करता है। राजकीय सामर्थ, कानून और परमेश्वर की पवित्रता को भड़काया गया है और इसलिए अपराधी को सजा होना ही चाहिए। प्रिय मित्र, अगर आप मृत्यु की सजा पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपसे मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। क्या आप कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अच्छे हैं? परमेश्वर मृत्यु की सजा के लिए अपना बचाव नहीं करता। आइए सुने गिनती की पुस्तक 35 अध्याय उसके 33 पद में परमेश्वर क्या कहते हैं। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। याद रखें, मत्ती और लुका की पुस्तकों में भी हमें मिलता है कि हाबिल का लहू भूमि पर से बदला के लिए पुकारता है। प्रिय मित्र, मुझे दूसरा सवाल पूछने दीजिए। मान लीजिए कि एक क्रूर अपराधी आपके छोटे बच्चे को उसके एड़ी से पकड़ता है और उसका सिर एक पत्थर पर पटक देता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ न्याय करना चाहिए? अब मैं आपके बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि दूसरे राज्य के किसी और बच्चे के बारे में। मित्र, सैद्धांतिक और आदर्श होना आसान है जब तक कि आप पर इसका कोई आँच नहीं पड़ता। एक देश में एक आदमी ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसके पति को जान से मार दिया। राज्यपाल भवन और सजा कक्ष के सामने उस व्यक्ति के मौत की सजा के विरोध भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। महिला के बारे में क्या है? वह पागल हो गई और वह पागल खाने में भर्ती है। उसके माता पिता मृत्यु की सजा पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो सारा तस्वीर बदल जाता है। परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को सजा होना ही चाहिए। एक शिक्षित युग के नाम पर एक आधुनिक व्यक्ति एक नरम रवैया अपनाने के प्रयास में मृत्यु की सजा को खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी यह परमेश्वर के वचन में सभी मनुष्यों की भलाई के लिए परोपकारी प्रक्रिया के रूप में स्थिर है। प्रिय मित्र, हम इस अध्याय का अध्ययन इन बिंदुओं पर अवश्य करेंगे। अपने बच्चों को मोलेक देवता के आगे बलिदान चढ़ाने की सजा मृत्यु, भूत सिद्धि या जादू टोना की सजा मृत्यु, माता पिता को श्राप देने की सजा मृत्यु, व्यभिचार करने वालों की सजा मृत्यु, कुछ पाप जो कम सजा की जरूरत और पवित्रता के नियम का निष्कर्ष है। प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रथम बिंदु अपने बच्चों को मोलेक देवता के आगे चढ़ाने की सजा मृत्यु पर चर्चा करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। अब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, न कि हारून से, न तो लोगों से। वह व्यवस्था देने वाला मूसा से बात कर रहा है क्योंकि यह दंड संहिता के बारे में है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय में पौलुस कहता है, जो हमारे ऊपर अधिकारी पद में है वे व्यर्थ हाथ में तलवार लिए हुए नहीं रहते हैं, उसका उनको इस्तेमाल करना है। न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं कि वह हमारे और आपके परिवार को खतरे में डालने के लिए एक क्रूर अपराधी को समाज में खुला छोड़ दे। कोई कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी एक नीच और पुराना किस्म का तरीका है, यह ठीक है कि वह नीच है। प्रिय मित्र, उन दिनों में उन्हें पत्थर से मार दिया जाता था, यह भी कोई अच्छा नहीं था। किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि वह अच्छा था, यह एक भयानक और डरावना था। मत भूलिए कि किया गया अपराध भी डरावना है। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके दो पद में हम पढ़ते हैं, इसराइलियों से कह कि इसराइलियों में से व इसराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोले को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह करे। मोले की पूजा जंगली, शैतानिक, निर्दय और पाशविक था। बच्चों को बलि के रूप में गर्म करके लाल किए गए मोलेक के प्रतिमा पर चढ़ाया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार प्रतिमा की बाहें फैले हुए थे और दोनों हाथों के बीच धधकती आग में बच्चों को डाला जाता था। यह पिशाच और शैतानिक था। प्रभु यीशु कितना विपरीत है जो अपने बाहें फैलाए कि छोटे बच्चों को ग्रहण करें। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 14 में लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। अपने बच्चों को मोले को चढ़ाने की सजा पत्थरवाह करके मार डालना था और यह देखना कठिन था कि कोई सजा का विरोध करता है या नहीं। पत्थरवाह की सजा किसी के लिए भी बहुत ही बुरा था। प्रिय मित्र, देश में बच्चों के प्रति क्रूरता को कम किया जा सकता है अगर न्यायाधीश उन माता पिता को सजा देते जो अपने छोटे बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। न्यायाधीश को उनकी रक्षा करनी चाहिए। लय व्यवस्था 20 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, और मैं भी उस मनुष्य के विरोध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। यह संभवतः सबसे कठोर भाषा है। मैं उस व्यक्ति के विरोध हो जाऊंगा, क्या यह क्षमा न करने योग्य पाप था? मैं नहीं जानता, लेकिन यह एक भयानक बात है। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। यह उसके पवित्र वेदी को अशुद्ध और उसके पवित्र नाम पर कलंक लगाता है। यजकेल की पुस्तक 23 अध्याय उसके 37 से 39 पद में हम पाते हैं कि इसराइल की संतानों ने ठीक यही किया और यह अनेक कारणों में से एक कारण था कि परमेश्वर का न्याय उन पर आ पड़ा। याद रखें, ईश्वर शासित राष्ट्र में प्रतिमा पूजा राजद्रोह था। लय व्यवस्था 20 उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य को और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोले के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। मित्र, एक पड़ोसी को अपना बच्चा मोलेक देवता को चढ़ाते हुए देखकर शांत रहने वाला व्यक्ति उस अपराध का साझा होता है। सजा देने में नरम दिल और नरम दिमाग का होना व्यक्ति भी दोषी ठहरता है। उसे लोगों से अलग करना था जो मृत्यु की सजा थी, अर्थात मृत्यु की सजा के बराबर था। प्रिय मित्र, आइए अब हम दूसरे बिंदु भूत सिद्धि करने की सजा मृत्यु पर विचार करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। यह दूसरी कुप्रथा थी जो उनके पहले देश में रहने वाले कनानी करते थे। यह एक झूठा धर्म था जो निश्चित रूप से शैतानिक था। कोई विरोध कर सकता है कि यह वास्तविक नहीं है, अर्थात नहीं था, और इसमें दैवी शक्ति का अभाव था। ईमानदारी से कहा जाए तो शैतान पूजा में दैवी शक्ति प्रकट होती है। सच तो यह है कि स्वयं प्रभु यीशु ने चेतावनी दिया है कि अंत के दिनों में मसीही विरोधी आएंगे और आश्चर्यकर्म करेंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भ्रमित करेंगे। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। परमेश्वर कहता है कि वह उन मनुष्यों के विरोध होगा जो झूठे देवता की पूजा करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों को पथरवा किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। मित्र, मैं इस पद को इसी भाग में लाता हूँ क्योंकि यह भी शैतानिक अंधविश्वास के बारे में है। शैतान ग्रसित होना वास्तविक है और यह सभी युग में वर्तमान रहा है। इस आधुनिक युग में शैतान ग्रसित लोगों द्वारा बहुत से रहस्यमय धर्म और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब शैतान का काम है। इन शैतानिक रीति रिवाजों को मानना या इसमें भाग लेने की सजा मृत्यु निर्धारित थी। परमेश्वर ने इन शैतानिक रीति रिवाजों को मानने की सजा मौत अर्थात मृत्यु क्यों निर्धारित किया? लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। ये पद मृत्यु की सजा का अच्छा और पर्याप्त कारण देते हैं। लोगों को पवित्र होना था क्योंकि वे परमेश्वर के थे और वह पवित्र था। इस पद्धति से अलग होना एक गंभीर अपराध था। इन बताए घिनौने कार्य को करने का अर्थ था परमेश्वर से फिरकर शैतान की ओर मुड़ना। यह एक आत्मिक व्यभिचार और राजद्रोह था। आज नहीं लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं कि यह कितना गंभीर हो सकता है। यह परमेश्वर का ब्रह्मांड है। मित्रों, परमेश्वर वास्तविक है। परमेश्वर के नियमों को कभी भी हल्का में नहीं लेना है। प्रिय मित्र, आइए अब हम तीसरी बिंदु, माता पिता को श्राप देने की सजा मृत्यु पर विचार करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, कोई क्यों ना हो जो अपने पिता व माता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। पांचवी आज्ञा को कम महत्व का न समझा जाए। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 3 पद में इसराइली को निर्देश दिया गया है कि वह माता पिता का आदर करें। अब माता और पिता को श्राप देने की सजा मृत्यु थोपा गया है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस ने कहा है दया रहित स्वभाव के बारे में। दूसरा तीमुथियों की पत्री 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हमें बताया गया है कि अंत के दिनों में बच्चे माता पिता के आज्ञा न मानने वाले होंगे और लोग दया रहित होंगे। यह पिछले समय के अन्य जातियों को चरितार्थ करता है और अंतिम दिनों के लोगों को चरितार्थ करेगा। यहाँ बताया गया सजा बहुत कठोर है। हमें यहाँ बताने की जरूरत है कि इस संबंध में बाइबल अनुग्रह भी देता है। यीशु ने खोए हुए पुत्र का एक दृष्टांत हमें दिया जो घर आया और उसके पिता द्वारा ग्रहण किया गया। यह अनुग्रह है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथी बिंदु, व्यभिचार करने वालों को मृत्यु की सजा पर विचार करें। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 से 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपने पतोहू के साथ सोए तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हें के सिर पर पड़ेगा। मित्र, इस संपूर्ण भाग में अकथनीय और यहाँ तक कि अविश्वसनीय पापों का वर्णन है। हर प्रकार और हर रूप में व्यभिचार की सजा मृत्यु थी। यौनाचार पापों ने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को ढाया है। मैं कहूंगा कि बेबीलोन, मिस्र, रोम, फ्रांस के पतन का 2 कारण शराब और अनैतिक यौनाचार थे। हमारे राष्ट्र के लिए यह क्या ही चेतावनी की बात है। यह आज के ढीले नैतिक के विरुद्ध एक घुड़की है। इन्हीं पापों के कारण सदोम और अमोरा पर आग और गंधक गिरा। यही वे पाप हैं जो परमेश्वर का अपने लोगों के त्याग का कारण बना, जो रोमियों के पत्र 1 अध्याय उसके 24 से 28 पद के अनुसार है। प्रिय मित्र, इन भयानक अनैतिक पाप और सजा की कठोरता के बावजूद उसके पास आने वालों को क्षमा करने के लिए उद्धारकर्ता तैयार खड़ा है। वह इस पाप और व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बीच अपने बलिदान रूपी मृत्यु को रखता है। प्रिय मित्र, उसकी बलिदान रूपी मृत्यु आपके लिए प्रायश्चित करता है अगर आप पापों की क्षमा के लिए उसके पास आएंगे। तो आइए अब हम 5वें बिंदु अर्थात कुछ पाप जिसे कम सजा की जरूरत है पर विचार करें। लयव्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 17 से 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित बात है, वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाले ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाएं, और अपनी मौसी व फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपने निकट कुटुंबिन को नंगा करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। और यदि कोई अपनी भौजी या भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जाना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। मित्र, अपनी या सौतेली बहन के साथ सहवास माना किया गया है और उसकी सजा आम जनता के सामने देना था। अपने लोगों के हर बात में परमेश्वर ने स्वच्छता की मांग की है, विशेष करके उनके यौनाचार के संबंध में। परमेश्वर ने निकट संबंधियों से शारीरिक सहवास या संबंध मना किया था। उसने यह भी नहीं कहा कि वे बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि यह कि उन्हें निसंतान मरना चाहिए। माता पिता जो इस अपराध के दोषी थे, मरने से पहले बच्चे मरेंगे। प्रिय मित्र, आइए अब हम 6वें बिंदु अर्थात पवित्रता के नियम का निष्कर्ष पर विचार करेंगे। लय व्यवस्था 20 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, तुम मेरी सब विधियों पर और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल देवे। परमेश्वर ने कनानियों को देश से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने इन भयानक पापों को किया था, और परमेश्वर इसराइलियों को चेतावनी देता है कि अगर वे वही काम करेंगे तो वह उन्हें देश से निकाल देगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने में असफल होने के कारण उन्हें बेबीलोन दासत्व में जाना पड़ा था। आइए हम दूसरे राजा की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1, 2, 6 और 9 पद में लिपिबद्ध वृत्तांत को सुने। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम बलि करके चढ़ाया, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जिनसे वह क्रोधित होता है, परंतु उन्होंने न माना। वरन मनुष्य ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। प्रिय मित्र, इससे फलिस्तीन में रहने वालों में से कुछ जातियों के नाश होने में परमेश्वर के न्याय होने के सवाल का जवाब मिलना चाहिए। इन पापों के कारण वे सामाजिक रोगों द्वारा नाश हुए। येरिहो शहर पर जीत हासिल करते समय परमेश्वर ने उन्हें कुछ भी वस्तु छूने या लेने से मना किया था। ये जाहिर है कि अनियंत्रित अनैतिक यौनाचार से उत्पन्न रोग महामारी का रूप ले चुका था। हम लय व्यवस्था 20 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं, और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुमको और देशों के लोगों से अलग किया है। यह दूध और मधु की धारा बहने वाला देश था, यह जंगल से पूरा भरा था। इसे क्या हुआ? आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसके 24 से 28 पद से सुने। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश के साथ ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह कहेंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के समय बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है और पराय देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश में भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया है, जैसा कि आज प्रकट है। आज लोग वहां पर पेड़ लगा रहे हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों ना हो जिसका मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। प्रिय मित्र, परमेश्वर अब इन विधियों की समीक्षा करता है जो उसके लोगों को भिन्न और पवित्र बनाएगा। उसने उनके खान पान से शुद्ध किया और उसी से अंत भी किया। वे देश से निकाले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। उन्हें पवित्र होना था जैसा उनका परमेश्वर पवित्र है। लेकिन आप कह सकते हैं कि वे देश में तो हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वे कैसे रह रहे हैं? जब से वे वापस देश में आए हैं वे प्रति मिनट कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि समस्या क्या है? वे देश में वापस आए लेकिन वे परमेश्वर के पास वापस नहीं आए। जब वे वापस परमेश्वर के पास आएंगे तो उस दिन फिर से उस देश में परमेश्वर का आशीष होगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला है। यह हमारे और हमारे देश के लिए एक सबक होना चाहिए। परमेश्वर महान और पवित्र है और वह पवित्रता की मांग करता है। यह लय व्यवस्था की पुस्तक का एक प्रमुख विषय है। प्रिय मित्र, हमने इस अध्ययन में जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्था या नियम की महत्ता के बारे में सुना। परमेश्वर के इन नियमों को तोड़ना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन खुशखबरी यह है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया है। अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। अब हम 21 अध्याय में आते हैं और इस अध्याय का शीर्षक है याजकों के निजी पवित्रता का नियम। 11 अध्याय से 20 अध्याय तक हम विधियों का अध्ययन करते आ रहे हैं जो साधारण जनता के लिए था। अब हम याजकों के निजी जीवन के पवित्रता के नियम का अध्ययन करेंगे। यह 21 और 22 अध्याय में पाया जाता है। हम यहाँ पाएंगे कि कई बातें दोहराई गई हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद के अनुसार परमेश्वर का यह मकसद था कि संपूर्ण जाति याजकों का राज होना चाहिए। सोने का बछड़ा के संबंध में इनकी अनाज्ञाकारिता ने एक सिद्ध और आदर्श समाज के अस्तित्व में आने की संभावना को बर्बाद कर दिया। मसीह के हजार साल शासन काल में यह सिद्ध समाज प्राप्त किया जाएगा। तब संपूर्ण इसराइली जाति इस धरती पर अन्य जातियों के लिए याजक गण होंगे। हजार साल और अनंत काल में मानव परिवार के यही तीन दल हैं। पहला नया यरूशलेम में यीशु मसीह की कलीसिया, दूसरा यहाँ इस धरती पर इसराइली जाति, और तीसरा इस धरती पर उधार पाए हुए अन्य जाति। प्रिय मित्र, इसराइल की असफलता के बाद परमेश्वर ने याजक होने के लिए सिर्फ एक गोत्र को चुना, लेवी का गोत्र। इसलिए इसराइल में मंडली, याजक और महायाजक थे। उच्च पद के लिए उच्च दायित्व की जरूरत होती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही ऊंची जीवन शैली की जरूरत भी होती है। प्रिय मित्र, आज कलीसिया को याजकों का समाज कहा जाता है। आज हर एक विश्वासी एक याजक है और अनुग्रह के सिंहासन के पास उसकी पहुँच है। हर एक विश्वासी याजक को एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है जो हमारे अंदर निवास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही संभव है। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 18 से 11 पद में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। पहला पत्रस 2:9-10 पद में परमेश्वर ने यह भी कहा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें उच्च जीवन शैली जीने के लिए बुलाया गया है। इफिसियों के पत्री 4 उसका 17 पद और 22-24 पद में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताया देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसा न चलो कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर के संतान अनुग्रह से बचाए गए हैं और उसे उच्च स्तर का जीवन के लिए बुलाया गया है। प्रिय मित्र, कलीसिया में कोई जिम्मेदार स्वीकार करने में एक विश्वासी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वह एक अधिकारी बनता है तो उस पद के अनुसार उसका जीवन होना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के साथ कम धीरज रखता हूँ जो कलीसिया में पद स्वीकार करते हैं और तब कहता है वह मध्य सप्ताह की सभा में या रविवार रात्रि सभा में आने में असमर्थ है। मेरे भाई, आपको तो कलीसिया पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। आप सोचिए, जिम्मेदारी सौभाग्य से मिलता है। एक पद के तहत प्रभु की सेवा करना एक सौभाग्य है। आपको ऊंचा किया गया है, तब आप इस लायक जीवन जिए। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु हमारे महान महायाजक हैं और उसने उस लायक जीवन जिया। इब्रानियों के पत्र 7:26-28 पद में उसके विषय में लिखा है, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। और उन महायाजकों की दया उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया है। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। प्रभु यीशु महायाजक और बलिदान दोनों है। उसने अपने आप को बलिदान किया। अब याजकगण और महायाजक नियम के अंतर्गत आते हैं। इसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे, क्योंकि हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
राजाओं का राजा है।